अलंकार विधान का शेष अंश पृष्ठ 99। 3, क्रिया का अनुभव तीव्र करने में सहायक अलंकार। क्रिया और गुण का अनुभव तीव्र कराने के लिए प्रस्तुत अप्रस्तुत वस्तु के बीच या तो अनुगामी कोष्टक में एक ही कोष्टक बंद धर्म होता है, या वस्तु प्रतिवस्तु या उपचरित। सीधी भाषा में जो कह सकते हैं कि अलंकार के लिए लाई हुई वस्तु और प्रसंग प्राप्त वस्तु का धर्म या तो एक ही होता है, या अलग-अलग कहे जाने पर भी दोनों के धर्म समान होते हैं, अथवा एक के धर्म का उपचार दूसरे पर किया जाता है, जैसे उसका हृदय पत्थर के समान है। देखिए, केवल क्रिया की तीव्रता का अनुभव कराने के लिए इस ललितोपमा का प्रयोग हुआ है। मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को बेग लजायो। सीता के प्रति कहे हुए रावण के वचन को सुनकर हनुमान जी को भी क्रोध हुआ। उसके वर्णन में इस रूपक का प्रयोग भी ऐसा ही है। अकनी कटु बानी कुटिल की क्रोध विंध बढ़ोई, सकुच राम भयो ईस आयुसु कल सभव जिय जोई। इनमें क्रिया या वेग को छोड़ प्रस्तुत अप्रस्तुत में रूप आदि का कोई सादृश्य नहीं है, पर गोस्वामी जी के ग्रंथों में ऐसे स्थल भी बहुत से मिलते हैं जिनमें बिंब प्रतिबिंब भाव से प्रस्तुत और अप्रस्तुत की स्थिति भी है, और धर्म भी वस्तु प्रतिवस्तु है। एक उदाहरण लीजिए, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिबे को काल रसना पसारी है, कंधो व्योम बितका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रसवीर तरवारी सी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप कंघो दामिनी कलाप, कैंघो चलु मेरुते कृशानुसरी भारी है। इसमें उत्प्रेक्षा और संदेह का व्यवहार किया गया है। इधर उधर घूमती हुई जलती पूछ या काल की जीभ और तलवार में बिंब प्रतिबिंब भाव कोष्ठक में रूप सादृश्य भी है, तथा संहार करने और दाह करने में वस्तु प्रतिवस्तु धर्म भी है। इस दृष्टि से यह अलंकार बहुत ही अच्छा है। पृष्ठ 100। दो एक जगह ऐसे उपमान भी मिलते हैं जिसमें कवि के अभिप्रेत विषय में तो सादृश्य है, पर शेष विषयों में इतना अधिक असादृश्य है कि उपमान की हीनता खटकनी है। जैसे सेवहीं लसन सीय रघुवीर ही, जिमी अव्येकी पुरुष शरीर ही। पर कहीं कहीं इस हीनता को कुछ अपने ऊपर लेकर गोस्वामी जी ने उसका सारा दोष हर लिया है। कामिही नारी पियारी जिमी, लोभही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुवंश निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। नीचे लिखे रूपक में उपमान और उपमेय का अनुगामी कोष्टक में एक ही कोष्टक बंद धर्म बड़ी ही सुंदर रीति से आया है। नृपन किरी आशा निसिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महीप मुकुट सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। इसमें ध्यान देने की पहली बात यह है कि केवल क्रिया का सादृश्य है, रूप आदि का कुछ भी सादृश्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि यद्यपि यहाँ सकुचना और लज्जित होना आया है, पर रूपक का उद्देश्य इन भावों का उत्कर्ष दिखाना नहीं है। बल्कि एक साथ इतनी भिन्न भिन्न क्रियाओं का होना ही दिखाना है। एक ही क्रिया का संबंध अनेक पदार्थों से दिखाती हुई यह तुल्य उपयोगिता भी बड़ी ही सटीक बैठी है। सबकर संयस अरु अज्ञानु मंद महिपन कर अभिमानु, मृगुपति केरी गर्व गरु आई सूर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक परितापा, रानिन कर दारुण दुख दापा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। प्रबंध धारा के बीच यह अलंकार ऐसा मिला हुआ है कि ऊपर से देखने में इसकी अलंकारिकता प्रकरण से अलग नहीं मालूम होती। बोहित को छोड़ और कोई सामग्री कभी प्रतिभा प्रदत्त या ऊपर से लाई हुई नहीं है। हाँ, वस्तुओं की जो सुंदर योजना है वह अवश्य कवि की प्रतिभा का फल है। यही प्रतिभा कवि को प्रबंध रचना का अधिकार देती है। कौतुक कवियों की वह प्रतिभा नहीं जो पंचवटी शोभा के वर्णन के समय प्रलय काल के बारहों सूर्य उतार लाती है। प्राप्त प्रसंग के गोचर अगोचर सब पक्षों तक जिसकी दृष्टि पहुंचती है, जिसकी परिस्थिति में अपने को डालकर उसके अंग प्रत्यंग का साक्षात्कार जिसका विशाल अंतःकरण कर सकता है, वही प्रकृत कवि है। जी न चाहने पर भी विवश होकर यह कहना पड़ता है कि गोस्वामी जी को छोड़ हिंदी के और किसी कवि में वह प्रबंध पटुता नहीं जो महाकाव्य की रचना के लिए आवश्यक है। प्रकरण प्राप्त विषयों को अलंकार सामग्री बनाती हुई किस प्रकार वे स्थान स्थान पर प्रबंध प्रवाह के भीतर ही अलंकारों का विधान भी करते चलते हैं, यह हम दिखाते आ रहे हैं। एक और उदाहरण लीजिए, जिसमें सहोक्ति द्वारा एक ही क्रिया कोष्टक में धनुर्भंग का कैसा विशद संग्राहक रूप दिखाया गया है। गही कर तल मुनि पुलुक सहित कौतुक कही उठाई लियो, नृपगण मुखनी समेत समित करी सेजी सुख सब ही दियो। आकार रस्यो सिय मन समेत हरि हरस्यो जनक हियो, भंजो भृगु पति गर्व सहित तिहु लोक विमोह कियो। पृष्ठ 101। तुलसीदास जी ने परिणाम का स्वरूप आगे रखकर कर्म की भयंकरता अनुभव कराने का कैसा प्रकृत प्रयत्न इस अप्रस्तुत प्रशंसा में दिखाई पड़ता है। मातु पितही जनि सोच बस करसी महीप किशोर। इसी प्रकार कर्म के स्वरूप को एक बारगी नजर के सामने लाने के लिए ललित अलंकार द्वारा उसका यह गोचर स्वरूप सामने रखा गया है। यही पापिनिहि सुजी का परेऊ, छाए भवन पर पावक धरेऊ। कूर और नीच मनुष्य यदि कभी आकर नम्रता प्रकट करे तो इसे बहुत डर ही बात समझना चाहिए। नीचों की नम्रता की यह भयंकरता को स्वामी जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से गोचर की है। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। यही बात दोहावली में दूसरे ढंग से गोचर की गई है। मिले तो सरल ही सरल वै कुटिल न सहस बिहाई, सो सहेतु ज्यो बक गति ब्याल न बिले समाई। जिसे हम 500 बार दुष्टता करके देख चुके हैं, वह यदि कभी बहुत सीधा बनकर आवे तो यह समझ लेना चाहिए कि वह अपना कोई मतलब निकालने के लिए तैयार हुआ है। मतलब निकालने के लिए तैयार दुष्ट संसार में कितनी भयंकर वस्तु है। क्रोध से भरी कैकेयी राम को वन भेजने पर उद्धत होकर खड़ी होती है, उस समय उसके कर्म और संकल्प की सारी भीषणता गोचर नहीं हो रही है। देश और काल का व्यवधान पड़ता है, इससे गोस्वामी जी रूपक द्वारा उसे प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अस कहीं कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दो बर कूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली बीपति बारिधि अनुकूला। पाप और पहाड़ तथा क्रोध और जल में यही अनुगामी धर्म है, शेष में वस्तु प्रतिवस्तु। जैसे नदी के दो कुल होते हैं, वैसे ही उसके क्रोध के दो पक्ष दोनों वर हैं। जैसे धारा में वेग होता है, वैसे ही हट में। जैसे भंवर मनुष्य का निकलना कठिन कर देता है, वैसे ही कुबरी के वचन परिस्थिति को और कठिन कर रहे हैं। यह सांख रूपक कैकेयी के कर्म की भीषणता को खूब आंख के सामने ला रहा है। पृष्ठ 102। भाव या क्रिया की गहनता द्योतित करने के लिए गोस्वामी जी ने प्रायः नदी और समुद्र के रूप का आश्रय लिया है। चित्रकूट में अपने भाइयों के सहित रामचंद्र जनक से मिलकर उन्हें अपने आश्रय पर ले जा रहे हैं। वह समाज ऐसे शोक से भरा हुआ था जिसका प्रत्यक्षीकरण इस रूप के ही द्वारा अच्छी तरह हो सकता था। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथ, सेन मनेहु करनु सरित लिए जाहि रघुनाथ। बोर्ति ज्ञान विराग करारे, वचन सकोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भवर अवर्त अपारा। केवट बूध विद्या बड़ी नावा, सखी न खेव एक नहीं आवा। आश्रम उदधि मेरी जब जाई, मनहु उठेऊ अम्बुद्धि अकुलाई।